भारत देश की संस्कृति आदर, सम्मान और सत्कार की संस्कृति है। चलो हम इसी संस्कृति की परंपरा को आज इस मंच पर अनुभव करें। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि पुष्प एवं बेज के द्वारा सभी सम्मानित मेहमानों का आदर सत्कार करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी जैमिना बहन और ब्रह्मा कुमारी शीतल बहन, सभी का पुष्प एवं बेज से सम्मान करने जा रहे हैं। हम सभी तालियों से इस दिव्य परंपरा को महसूस करेंगे। आदरणीय बद्री विशाल भाई जी, असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निर्देशालय लखनऊ, आदरणीय भ्राता दिनेश भाई कुलकर्णी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ दिल्ली, आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी उपाध्यक्ष कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय भ्राता डॉक्टर सी एम मुरलीधरन जी डायरेक्टर रिसर्च सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय सरदार कृषि नगर, आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई, आदरणीय राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी नेशनल कोऑर्डिनेटर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, स्वागत की इस सुंदर परंपरा को और चार चांद लगाने के लिए हम सभी के बीच में पधार रही हैं मेहसाणा सेवा केंद्र की कुमारियां। नृत्य प्रस्तुति हम सब के अब सब के सामने रखेंगी।
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार, इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते।
आपको भी लाख अभिनंदन है इतनी सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए। आदरणीय सरला दीदी जी दोनों ही कन्याओं को पुष्प देकर के सम्मानित कर रही है। हम लोग तालियों से, जोरदार तालियों से इन कुमारियों को अभिनंदन और दिल की दुआएं दे। स्वागत की इस सुंदर कड़ी को और जोड़ करके सुशोभित करने के लिए पधार रहे हैं हम सभी के बीच में मधुर वाणी ग्रुप। मधुर वाणी ग्रुप के आदरणीय सतीश भाई और सभी भाइयों को हम आमंत्रित करते हैं। हम आपका भी तालियों से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय नितिन भाई और सतीश भाई हम सब के बीच में गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
धरा गगन पवन चमन अभिनंदन करते बारंबार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे अतिथि देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे अतिथि देवता नमस्कार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना स्वागत स्वीकार करें।
सर्वांगीण विकास का आधार यौगिक खेती है, धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबो धरती है। स्वागत करती अरावली अपने आंचल में भरती है, स्वागत करती अरावली अपने आंचल में भरती है, धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबो धरती है, धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबो धरती है। सर्वांगीण विकास था तो सोलन चिरैया भारत था, सर्वांगीण विकास था तो सोलन चिरैया भारत था, कृषि कृषि थी सब में ही भारत को मिला महारत था, ऋषि कृषि थी सब में ही भारत को मिला महारत था। ऋषि कृषि ही भारत की प्राचीन कृषि की पद्धति है। ऋषि कृषि ही भारत की प्राचीन कृषि की पद्धति है। स्वागत करती अरावली अपने आंचल में भरती है। धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबू धरती है।
बहुत खुशी के पल हैं, आपके कर्तन ध्वनि आपके सृष्टि करते हैं।
नयन में स्वर्णिम स्वप्न लिए आदर्श गाव संकल्प लिए। नयन में स्वर्णिम स्वप्न लिए आदर्श गाव संकल्प लिए। भारत क्या सारी दुनिया का करने का या कल्प लिए। भारत क्या सारी दुनिया का करने का या कल्प लिए। दिव्य क्रांति का बिगुल बजाए राजयोग रणभेरी है। दिव्य क्रांति का बिगुल बजाए राजयोग रणभेरी है। स्वागत करती अरावली अपने आंचल में भरती है। धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबू धरती है। शिव शक्ति दल सर्वांगीण विकास करने चल पड़ा। शिव शक्ति दल सर्वांगीण विकास करने चल पड़ा। शाश्वत यौगिक खेती करने किसान भी है निकल पड़ा। शाश्वत यौगिक खेती करने किसान भी है निकल पड़ा। ज्ञान सरोवर मस्त मनोहर पवन यहाँ की कहती है। ज्ञान सरोवर मस्त मनोहर पवन यहाँ की कहती है। स्वागत करती अरावली अपने आंचल में भरती है। धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबू धरती है। धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबू धरती है। वो धरती पुत्रों का अभिनंदन करती आबू धरती है।
अभिनंदन है, अभिनंदन है। पुष्पों से अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं आदरणीय सतीश भाई एवं आदरणीय नितिन भाई। हम सभी तालियों से इस अभिनंदन की परंपरा में अपने आप को जोड़ेंगे। स्वागत का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप वो अंतर के भाव और शब्द हैं। शब्द सुमन से सभी का स्वागत करने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हो रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी। आदरणीय राजू भाई जी कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बचपन से ही अर्थात पिछले 60 से भी अधिक सालों से आपने अपना जीवन इस तपस्या के मार्ग पर समर्पित किया हुआ है। आप एक अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छे लेखक भी हैं। आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा आदि पुस्तकों की रचना की है। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन समय प्रति समय पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित होता रहता है। स्वागत उद्बोधन करेंगे आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। सर्वात्माओं की कल्याणकारी परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, आज की मंच को सुशोभित कर रही हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें, हमारे इस विद्यालय से बहुत समीप संबंध रखने वाले आदरणीय भाई तथा इस सभा में उपस्थित भारत के कोने कोने से पधारे हुए कृषि अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक तथा शाश्वत योगिक खेती करने वाले किसान भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज ज्ञान सरोवर के इस पावन भूमि पर एक कितने सुंदर विषय को लेकर के हम सभी यहाँ पर 3 दिन के लिए एक सुंदर गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस गोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर हमारे भारत से विशेष करके भ्राता दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ नई दिल्ली, आप हमारे मध्य पधारे हैं। बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं से आप बहुत जानकार हैं, समीप रहे हैं, देखते आए हैं और समय निकाल करके इस सुंदर अवसर पर इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादियों की ओर से, अपने वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से और विशेष ग्राम विकास प्रभाग की ओर से बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत पड़ोसी, बहुत समीप दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी से आज की सभा में हमारे वाइस चांसलर साहब पहुँचने वाले थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारण आप नहीं आए हैं। वहाँ से एक बहुत सुंदर वैज्ञानिकों की टीम हमारे बीच आई है। मैं अनुरोध करता हूँ जो दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से साइंटिस्ट इस सभा में बैठे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उठेंगे, उठ के अपने दर्शन कराएं सबको। हमारे डॉक्टर CM मुरलीधरन जी हमारे बीच हैं, आप डायरेक्टर रिसर्च सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय सरदार कृषि नगर। आप सबको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जब इस शाश्वत योगिक खेती की शुरुआत हुई, इसका प्रारंभ हम सभी ने 2007 में किया था, तो दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी ही इस प्रोजेक्ट को विशेष रिसर्च के लिए 5 साल की एग्रीमेंट की थी। और वहाँ बहुत सुंदर रिजल्ट मिलने के बाद हमारी अनेक अन्य यूनिवर्सिटीज में इस विषय को लेकर के अनुसंधान हुए हैं। आज फिर से दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हमारे बीच में हैं और एक बहुत सुंदर मेमोरेंडम पर आज यहाँ साइन होगा, फिर से 5 साल के लिए हम सब रिसर्च के लिए तैयार हैं। हमारे मध्य में लखनऊ से हमारे भ्राता बद्री विशाल तिवारी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निदेशालय लखनऊ, आप भी एक बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा ग्रुप लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश से इस धरनी पर पधारे हैं। मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर्स, जो हमारे रिसर्च के अधिकारीगण लखनऊ से या उत्तर प्रदेश की धरनी से पधारे हैं, वो थोड़ा सा खड़े होंगे, हाथ उठाएंगे। बहुत बड़ा ग्रुप आया है, करीब 21-22 भाई हमारे इस संगठन में सभी रिसर्च डायरेक्टर्स पहुँचे हैं। हम आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन जी, जो हमारे इस विद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, कुछ ही पल में हम सबके मध्य पहुँचने वाले हैं। उनका भी मैं बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में ग्राम विकास प्रभाग बहुत ही आगे बढ़ते अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है, और साथ साथ इस ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर हमारी दीदी डॉक्टर निर्मला जी, वो भी आप सबके मध्य बहुत शीघ्र पहुंचने वाली हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रभाग की सेवाओं को तीव्र गति प्रदान करने वाली, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी, जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा हैं, आपके निर्देशन में बहुत अच्छी सेवाएं पूरे भारतवर्ष में अनेक जगह पर चलती रहती हैं। आपकी अथक मेहनत से ही बहुत सारी इस सेवाओं में प्रगति और आगे बढ़ते हुए हम सब अनुभव कर रहे हैं। हम ऐसी ब्रह्मा कुमारी सरला बहन का भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस स्टेज पर हमारे इस प्रभाग की दो नेशनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित हैं, जिनके कार्य क्षेत्र में बहुत से किसान भाई बहने यौगिक खेती कर रहे हैं। ऐसी हमारी दीदी सुनंदा दीदी जी, जो महाराष्ट्र से यहाँ पर पधारी हैं, आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनके निर्देशन में बहुत सारे किसान भाई यौगिक खेती की प्रयोग करते रहते हैं, और साथ साथ सूरत सेवा केंद्र से जो आज का मन संचालन कर रही हैं हमारी आदरणीय तृप्ति दीदी जी, इनका भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही उमंग उत्साह है, हजारों भाई बहनों को आप बहुत सुंदर प्रवचनों के द्वारा, अपनी प्रेरणाओं के द्वारा आगे बढ़ाती रहती हैं। अनेक किसानों से यौगिक खेती और विशेष यौगिक गृह वाटिका आपने बनवाई है, आपका भी बहुत बड़ा योगदान इस सेवाओं में सदा रहता है। साथ साथ आप सबके हर प्रकार की व्यवस्था के निमित्त जो भी इस परिसर में आज पहुँचे हैं, उनकी पूरी देख रेख, उनका पूरा ही डाटा रखना, उनको स्वीकृति देना, हमारे सुमंत भाई जो प्रभाग के कोऑर्डिनेटर्स हैं, हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर्स, उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी जो इस समय इस सभा में उपस्थित हैं, जो हमारा मूल विषय है, आज मैं विचार कर रहा था क्या सर्वांगीण विकास केवल खेती से हो जाएगा? इतना बड़ा भारत देश जिसको हमें स्वर्णिम बनाना है, उसके लिए जो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो दो शब्दों पर अगर ध्यान दिया जाए तो मैं समझता हूँ सचमुच ये भारत विश्व गुरु बनेगा और शाश्वत यौगिक खेती संपूर्ण सर्वांगीण विकास का आधार स्तंभ बन जाएगी। वो दो शब्द हैं, एक तरफ योग और दूसरी तरफ खेती। अगर किसान योगी बन जाए और योग युक्त होकर के अपने बहुत पवित्र शुभ संकल्पों के आधार से, अपने पवित्र आभा मंडल के आधार से खेत पर जाए और खेती करेगा, तो उसके द्वारा उपजाया हुआ जो अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, उनके वाइब्रेशंस द्वारा संपूर्ण विकास संभव है, जिसमें चार बातें हमारे ध्यान पर आती हैं। एक तरफ आर्थिक रूप में संपूर्ण विकास होगा, किसान जो आज गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है उसकी आमदनी बढ़ेगी, कम खर्चे में कम लागत में अच्छी फसल वो ले सकेगा, आर्थिक रूप में देश का विकास होगा। लेकिन सबसे बड़ा विकास जो वर्तमान समय की आवश्यकता है, वो है मानसिक विकास की। मन के अंदर जो कमजोरियां हैं, विकार आए हैं, मानसिक हमारी ऊंच स्तर पर मनसा पहुंचे, उसके लिए जैसा अन्न वैसा ही मन। तो अन्न की जो क्वालिटी है, अगर उसको ठीक कर दिया जाएगा तो सबका मन शुद्ध होगा और मानसिक रूप में हमारा देश सशक्त बन जाएगा। और तीसरी बात है शारीरिक। अगर शारीरिक विकास योग युक्त उपजाया हुआ अन्न, उसके द्वारा बना हुआ अन्न, हमारे भ्राता जी ब्रजमोहन भाई जी पहुंच चुके हैं, सभी बहुत प्यार से ताली बजा करके आपका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। तीसरी बात मैं कह रहा था, शारीरिक विकास, वो भी स्वस्थ रह सकते हैं क्योंकि अन्न ही स्वास्थ्य का आधार स्तंभ है। तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और चौथी पारिवारिक, जो आज परिवार में कलह क्लेश हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, उन सब का भी निपटारा जैसा अन्न वैसा मन उससे हो सकता है। तो चारों प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास के आधार से हम इस भारत को फिर से स्वर्णिम बना सकते हैं। इस शाश्वत योगिक खेती को अगर सही दिशा से अपना करके किसान भाई बहने, जो हमारा भारत देश 70% किसानों का है, अगर ये सभी योगी बने और योगिक खेती करेंगे तो पूरा भारत फिर से अपने उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेगा जो भारत पूरे दुनिया को मार्गदर्शन देता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और यदि आप सभी को यहां पर आए हैं, कोई भी प्रकार की बात, प्रश्न हो या कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, तो आप हमारे ग्रुप से जो आपकी सेवा पर उपस्थित है उनसे मिल सकते हैं, ले सकते हैं सेल्वेशन। और मैं समझता हूं आप सभी बहुत आराम से इस परिसर में होंगे। ये ज्ञान सरोवर सुखद परिसर है, आने वाले आत्माओं को बहुत आनंद की अनुभूति कराता है। तो ऐसे स्थान पर आप सब पहुंचे, आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत देर से स्वागत है। ओम शांति।
आपका भी भाई जी, हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम सभी के बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रतिभा आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिज मोहन भाई जी उपस्थित हैं। हम तालियों से भाई जी का अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि भाई साहब को गुलदस्ता और बेज लगाकर सम्मानित करेंगे। हम सब अपनी तालियां बनाए रखेंगे, तालियां वातावरण को आह्लादक बनाती हैं, तंदुरुस्ती को बढ़ाती हैं, हमारी चेतनाओं को जागृत रखती हैं। तालियां हमें अपना बचपन याद दिलाती हैं। अभी हम सबके बीच में प्रस्तुत होने जा रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी। आज के इस सभा के आप मुख्य वक्ता हैं। सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योगिक खेती किस प्रकार से पूरा इतिहास हमारे बीच में रखेंगे, हम सब खूब एकाग्रता से और शांत चित होकर के इस प्रेजेंटेशन को निहारेंगे। आदरणीय बद्री विशाल भाई जी पिछले 35 से भी अधिक वर्षों से कृषि एवं ग्राम विकास की सेवाओं के साथ सरकारी डिपार्टमेंट में जुटे हुए हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि निर्देशालय लखनऊ से हैं। पिछले 34 वर्षों से आपने अपना जीवन इस आध्यात्मिक मार्ग पर मोड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रहकर के आपने किसानों के कल्याण के लिए अनेक सरकारी योजनाएं और अभियान निकालने में सहयोग दिया है। आदरणीय बद्री विशाल भाई जी,
ओम शांति। आप सभी बोलें तो अच्छा लगेगा। ओम शांति। सम्मानित मंच, और आज उस मंच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि भ्राता दिनेश कुलकर्णी जी, अतिथि विशेष डॉक्टर सीएम मुरलीधरन जी, हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन जी, सरला दीदी जी, राजू भाई साहब, सुनंदा दीदी जी, तृप्ति दीदी जी, सुमंत भाई जी और सभा में कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से पधारे निदेशक डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी, एमडी सीड कारपोरेशन उत्तर प्रदेश डॉक्टर जितेंद्र तोमर जी, एडिशनल डायरेक्टर श्री वीरेंद्र सिसोदिया जी, प्रोफेसर सुनीता पांडे जी और दातीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पधारे सभी वैज्ञानिक गण, सभा में उपस्थित विभिन्न प्रांतों से पधारे किसानों के मसीहा, किसानों के कल्याण का चिंतन करने वाले, उनके कल्याण की सोच रखने वाले, कृषि विभाग से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारी, वैज्ञानिक भाइयों एवं बहनों, अगले 15-20 मिनट में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो कार्यक्रम है सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत यौगिक खेती, तो सर्वांगीण विकास क्या है और आ रहा है सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है और यौगिक खेती क्या है, ये कौन सी बला है यौगिक खेती जिससे सर्वांगीण विकास हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमारा प्रयास होगा कि सरल भाषा में आपके सामने रखूं। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण का मतलब है कि सभी अंगों से जिसका संबंध हो, सभी अंगों से संबंध, जैसे शरीर है तो शरीर के सभी अंग पूरी तरह विकसित होते हैं तो शरीर पूरी तरीके से काम करता है, और अगर उसका कोई एक अंग विकसित न हो तो उसे दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। तो वो आत्मनिर्भरता नहीं होती है, ऐसे ही ये समाज है और समाज के विभिन्न अंग जिसमें किसान भी होगा, जवान भी होगा, कामगार भी होगा, मजदूर भी होगा, विभिन्न प्रोफेशन में काम करने वाले लोग होंगे, वो सभी विकसित हों। तो विकास का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, लोग आम तौर से समझते हैं विकास का मतलब आर्थिक विकास है और इतनी संकीर्ण सोच हो गई है कि उसकी आगे बुद्धि चलती नहीं है। जैसे अभी राजू भाई साहब ने बताया कि संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक, जब संपूर्ण रूप से विकास होता है और हर क्षेत्र का विकास होता है तो उसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि एक सर्वांगीण विकास दिखाया गया है जिसमें सबका हाथ, सबका सहयोग और सबका विकास, हर हाथ को काम, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, अपनी उन्नति कर रहा है, खुशहाल जीवन जी रहा है, और दूसरी तरफ एकांगी विकास, कुछ लोगों के हाथ में जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। तो उसमें बैलेंस में देखेंगे आप, एक तरफ एक आदमी खड़ा है, दूसरी तरफ तीन आदमी खड़े हैं, इससे भी ज्यादा डिसबैलेंस है, एक तरफ कुछ गिने चुने लोग हैं और दूसरी तरफ पूरा समाज है। तो विकास का उद्देश्य ये होता है कि समाज में संपूर्ण सुख शांति हो। तो ऐसा कभी रहा है या कोरी कल्पना है, इस पे हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि ये भारत संपूर्ण विकसित भारत था। सत्ययुग में आप जाएंगे तो कितनी प्रेमपूर्ण वहां की संस्कृति थी, कैसा प्रेमपूर्ण समाज था, शेर और गाय घाट पानी पीते थे, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर त्रेता युग में जिसको राम राज्य कहते हैं, आज भी उसकी परिकल्पना की जाती है कि राम राज्य जहां पर सब सुंदर सब विरु शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोधन लक्ष्य नहीं ना, कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई बुद्धिहीन नहीं, ऐसा समाज। फिर उसके बाद द्वापर में आते हैं जो दुनिया में कहते हैं कि चैन की बंसी वहां पर बजती थी। अब सतयुग त्रेता द्वापर को हम छोड़ देते हैं और कलयुग में आ जाते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो समय है 375 ईस्वी में, उसमें जो चीनी यात्री ने भारत का वर्णन किया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही स्वर्ग है। 14 वर्ष तक फायान यहां पर रहा और उसने समाज के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन किया। उसने राजकाज की व्यवस्था के बारे में, वहां की प्रजा के बारे में, वहां की प्रकृति के बारे में, वहां के लोगों के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि आप उसको पढ़ करके जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही स्वर्ग है, जहां पर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कड़क कानून नहीं, और निर्भय होकर के प्रजा रहती है। राजा भी वेश बदल करके जाता है, लोगों को देखने के लिए प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं, चोरी चकारी नहीं होती, समाज में प्रेम पूर्ण व्यवहार है, किसी से कोई नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, बैर नहीं, विरोध नहीं। अब उसके भी बाद में आ जाइए, 17वीं शताब्दी तक आप देखिए, भारत गुप्त वंश तक कहते हैं कि सोने की चिड़िया भारत था। और उस समय भारत सोने की चिड़िया किस कारण से था? क्या उस समय बड़े बड़े कारखाने लगे थे, बड़े बड़े उद्योग लगे थे, क्या था उस समय? 85% से ज्यादा जनता खेती करती थी और घरों में कुटीर उद्योग चलते थे, हर हाथ को काम, बच्चा भी खेती में लगा है, बूढ़ा भी लगा हुआ है, जो जिस काबिल है हर काम में लगा हुआ है। घर घर में कुटीर उद्योग चलते थे, कोई सूत काटता है, कोई कपड़े बनाता है, कोई डलिया बनाता है, कोई चटाई बनाता है, कोई अचार बनाता है, कोई मुरब्बा बनाता है। और यहां के उत्पादों की मांग विदेशों में इतनी ज्यादा थी कि पानी के जहाज भर भर करके जाते थे और वहां से सोना भर करके लाते थे, और सोना घरों में रखने को नहीं होता तो राजा के यहां रखा जाता था, और राजा भी अपने राजा के यहां यानी अपने इष्ट के यहां मंदिर में रख देता था। इसलिए सारे प्राचीन मंदिर सोने से भरे हुए मिलेंगे और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। वर्ल्ड GDP का 50% से ज्यादा भारत के पास था, पूरे विश्व की संपत्ति का 50% से ज्यादा भारत के पास था, ऐसा हमारा स्वर्णिम भारत 17वीं शताब्दी तक था। कितने वर्ष तक हम पहुंच गए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज से कितने वर्ष पीछे की बात हम कर रहे हैं? कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। आज से 350-400 वर्ष पहले की बात है। यह हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सभी समृद्ध थे, सभी सुखी थे, सर्वांगीण विकास था। लेकिन क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, क्या कमी हो गई? अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो भारत के विकास का आधार था, संपूर्ण विकसित क्यों था, प्राकृतिक कृषि थी, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था थी, जितने हाथ उतने काम, कुटीर उद्योगों का जाल बिछा हुआ था और विशिष्ट उत्पादों की विदेशी ग्राहकों में बहुत लोकप्रियता थी, भारतीय सशक्त पोत परिवहन, उस समय कोई सड़क के माध्यम से कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई सड़क नहीं, कोई रेलगाड़ी नहीं, कोई मोटर नहीं, पानी के माध्यम से जितने पुराने शहर आपको मिलेंगे सब नदियों के समुद्र के किनारे मिलते हैं और वहां से व्यापार होता था, और सबसे बड़ी चीज भाववान परस्पर सहयोगी शांतिपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था थी। जहां पर शांति होती है वहां पर विकास होता है, जहां पर भय है, चिंता है, अशांति है, वहां पर विकास कैसे होगा? तो संपूर्ण विकसित भारत इस कारण से था। फिर भारत को अंग्रेजों ने लूटा और लोगों ने लूटा, लेकिन अंग्रेजों ने जो लूटा लंबे समय तक लूटते रहे। और एक अध्ययन किया है अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक हैं, उनका कहना है कि इस भारत से जो अंग्रेजों ने लूटा उसकी कीमत आज आंकी जाए तो $45 ट्रिलियन है। आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमारे देश के जो कर्णधार हैं पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, इसका कितना गुना, कितना गुना? 9 गुना लूट करके अंग्रेज ले गए। और लूटा ही नहीं, यहां का जो ढांचा था, जो कुटीर उद्योगों का ढांचा था, जो खेती की व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त कर दिया। कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए और हम लोग आ गए रासायनिक खेती पर। रासायनिक खेती जब भुखमरी के कगार पर भारत था तो कोई विकल्प नहीं था, रासायनिक खेती शुरू हुई और इतनी भयानक हो गई वो, आज की तारीख में हम देखते हैं कि वो मिट्टी को बीमार कर रही है और जो चीजें मिट्टी में है वो हमारे शरीर में है। जब मिट्टी बीमार होगी तो उससे पैदा होने वाला अन्न फल फूल पदार्थ जो भी खाएंगे दूध सब्जियां सब हमको अस्वस्थ करेंगी। अब मित्र कीटों का विनाश होने लगा, जो किसानों के मित्र कीट थे उनका विनाश होने लगा, पोषक अनाज आज मिलेट ईयर इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है कि पोषक अनाज जो भारतीय अनाज थे जिसको खा के लोग स्वस्थ रहते थे वो अनाज समाप्त हो गए और किसान की दयनीय दशा हो गई, जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर हो गई। जलवायु परिवर्तन होने लगा और लगातार जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटने लगा और हालत किसान की क्या हो गई। किसान तीनों तरीके से आर्थिक सामाजिक और मानसिक तीनों तरीके से कमजोर हो गया और अब हम इसे चाहते हैं कि इसका सर्वांगीण विकास हो और किसान का सर्वांगीण विकास होगा ग्रामीणों का होगा तो पूरे देश का होगा, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो सर्वांगीण विकास कैसे हो, आर्थिक विकास हो सामाजिक विकास हो और मानसिक विकास हो। अब यौगिक खेती इसका कैसे काम कर सकती है, यौगिक खेती है क्या, यौगिक खेती है भौतिक तथा पराभौतिक ऊर्जा के समन्वय के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है उस खेती को करना, उस पद्धति से खेती करना, ये यौगिक खेती है। इसमें योग मुख्य है, उसको हमने मिसिंग किया है। आज चर्चा हो रही है कि प्राकृतिक खेती की ओर हम लौटें लेकिन उसमें जो हमारी प्राचीन परंपरा है वो मिसिंग है, तो उसे पुनर्जीवित करने का काम इस यौगिक खेती में किया गया है। ये ऋषि मुनियों द्वारा सुझाई गई परंपरा है, वृक्षायुर्वेद उसका प्रमाण है जो किस तरीके से भावनात्मक संबंध जोड़ने की बात करता है और वही बताता है कि लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसका खेत में गाय और गौमूत्र और गोबर से कैसे खाद बनाई जाएगी। तो हमारी जो प्राचीन व्यवस्था है वो जड़ और चेतन दोनों में समन्वय स्थापित करती है, प्रकृति और पुरुष दोनों का विकास चाहती है। हम एकांगी विकास में लगे हुए हैं और उसमें भी केवल एक आर्थिक विकास, और ये व्यवस्था जो प्राकृतिक खेती है जो ये यौगिक खेती है ये जड़ और चेतन दोनों में समन्वय स्थापित करती है, प्रकृति से प्रेम स्थापित करती है और प्रकृति से प्रेम हमारी भारतीय संस्कृति थी, चाहे छठ पूजा हो, गंगा दशहरा हो, लोहड़ी हो, पोंगल हो, जितने भी त्योहार हैं, चाहे उसमें वट वृक्ष की पूजा हो, ये सारे त्योहार प्रकृति से प्रेम सिखाते हैं और ये प्रेम हमारे ग्रंथों में हमारे वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। हमारे यहाँ की हल की फाली की पूजा, बैल की पूजा, धरती की पूजा, अरवा ची सुगे भव सीते वंदा महेतम यथा न सुबका शशि यथा न सुफला शशि, उस हल की फाली की भी हम पूजा करते हैं, उसके बिना सफल नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे बापूजी कहते हैं कि हर हाथ को काम होना चाहिए और ये जो प्रकृति के संसाधन है ये हमारे बच्चों के ऋण के रूप में है, इन्हें हमें अदा करना होगा, कम से कम उसे हम वृद्धि नहीं कर सकते, तो जिस हालत में प्रकृति है उस हालत में हम अपने बच्चों को हमें देना होगा। अब ये सबसे बड़ी भूल हुई क्या, कृषि जो है वो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, लोगों ने इसको अर्थशास्त्र का विषय बनाने की कोशिश किया, ये दर्शन शास्त्र का विषय है। किसान ऋषि बनता है तब कृषि करता है, ऋषि और कृषि संस्कृति है भारतीय संस्कृति, वो जिन चीजों को देखता है पेड़ पौधों को पशु पक्षियों को जीव जंतुओं को, तो दर्शन माना देखना, जिसको आप देख रहे हैं उनके बारे में सोचें, ये किसके लिए है, ये नदी किसके लिए है, ये पेड़ किसके लिए है, ये जीव जंतु किसके लिए है, ये हमारे लिए है, ये हमको दे रहे हैं लेकिन हम इनको क्या दे रहे हैं, ये अपने आप से सवाल पूछिए तब आप वास्तविक किसान बनेंगे, तभी आप उस भारतीय संस्कृति को जीवित कर सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हो गई है और हमारी जो यौगिक खेती है इसको पुनर्जीवित करती है और इसके जो स्टेप हैं उसमें पहला स्टेप है भूमि का उपचार, दूसरा बीज का उपचार, जल का उपचार, फिर फसल सुरक्षा के लिए नेचुरल तरीके से जो प्रकृति ने दिया है उन पत्तियों से और नीम के तेल से, निमार्ग से उनकी सुरक्षा के साधन अपनाना, सह फसली खेती करना और उसको वाइब्रेशन देने के लिए परमात्मा का झंडा लगाना, काम करते हुए परमात्मा को याद करना और जो प्रकृति ने दिया उसका उपहार समझ करके, उसका आभार व्यक्त करके उसे स्वीकार करना, ये शाश्वत योगी खेती के स्टेप हैं जिनको हम किसानों को सिखाते हैं। और इसमें हमने दिखाया है कि दोनों का तुलना करते हुए कि ये खेती, रासायनिक खेती 5 दशकों में बुरी गति को प्राप्त हो चुकी और ये योगिक खेती युगों युगों से स्वीकार थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इस कृषि को हमें अपनाना होगा। अब इसमें देखें आर्थिक विकास कैसे होता है। जैसे जैसे जीवाणुओं का विकास होता है, सॉयल हेल्थ इंप्रूव होगा, पर्यावरण दुरुस्त होगा, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और किसान की इनकम बढ़ेगी। और सामाजिक परिवर्तन क्या आता है, इस योगिक खेती में परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात की जाती है, उसकी शक्ति को फसल पर प्रयोग करने की बात की जाती है और ये बताया जाता है कि ईश्वर एक है और हम सभी उसके बच्चे हैं। तो समाज में एक प्रेमपूर्ण व्यवहार का निर्माण होता है, सामाजिक एकता में वृद्धि होती है और संगठित समाज होता है व्यसन मुक्त, अंधविश्वास रहित, भेदभाव मुक्त, स्वच्छ और स्वस्थ समाज होता है तो वहां पर खुशहाली होती है। मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि मन का विकास हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, मन की स्थिति उच्च हो जाए तो ये सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अगर इंसान दुरुस्त हो जाए तो ये प्रकृति दुरुस्त हो जाएगी, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो इस पर काम कोई नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस योगिक खेती के माध्यम से पूरे विश्व में कर रही है। इसको अपनाने की जरूरत है, मन पर काम करने की जरूरत है। तो ये शाश्वत योगी खेती अन्न और मन की शुद्धि द्वारा आर्थिक, सामाजिक और मानसिक विकास का एकीकृत अभियान है जो इस समय सारे विश्व में चल रहा है। इससे प्रकृति और पुरुष दोनों का संपूर्ण विकास होगा और फिर से वो स्वर्णिम दुनिया जो हमने आपको दिखाई थी वो फिर से वो दुनिया आएगी। तो अंत में एक बात अपनी कह करके, एक संकल्प आप सबके मन में डाल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर चाहिए भारत का फिर से सर्वांगीण विकास, योगिक खेती अपनाने का जन जन करे प्रकाश। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बद्री विशाल भाई जी, जो आपने भारतीय संस्कृति और भारतीय कृषि क्या थी, क्या बन गई और हमें फिर से क्या बनाना है वो हम सब के सामने चित्र के साथ प्रस्तुत किया। हम अभी स्वागत हमारी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का करने जा रहे हैं। हम सब के बीच में शांत, सौम्य और तेजस्वी प्रतिभा आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी उपस्थित हैं। पूरे ही ज्ञान सरोवर के आप डायरेक्टर हैं। हम आपका तहे दिल से बेज और गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। बहनों से अनुरोध है हम सब अपनी तालियां बनाए रखेंगे। दीदी जी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज के इस विषय को न्याय देने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय भ्राता दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ नई दिल्ली। 1988 से आप संघ के प्रचारक रहे हैं। भारत के सभी राज्यों के अंदर किसान कल्याण और किसान उत्कर्ष के लिए आपने भ्रमण किया है। अखिल भारतीय किसान संगठन के आप मंत्री के रूप में सारे भारत देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय भ्राता दिनेश कुलकर्णी जी।
धन्यवाद तृप्ति दीदी जी। सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योगिक कृषि के इस चार दिवसीय सम्मेलन में उपस्थित इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी कार्यकर्ता, उसमें इस ज्ञान सरोवर की निदेशक आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी, यहां ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ब्रह्म कुमार ब्रजमोहन भाई जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे सबका स्वागत किया, ऐसे उपाध्यक्ष कृषि व ग्राम विकास प्रभाग के ब्रह्म कुमार राजू भाई जी, और इस पूरे कृषि के विषय को जो पूरे देश भर में बहुत ही एक जोश के साथ में और सब जगह पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है, और हमने भी जब जिनको इस मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया था तो उसमें भी लंबा प्रवास करके आप हमारे साथ में उपस्थित रही थी, ऐसे कृषि व ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सीएम मुरलीधर जी, जिन्होंने हमको अभी बहुत ही अच्छे प्रकार से योगी खेती के संदर्भ में जो बातें सबको और बहुत सरलतम भाषा में समझाई, ऐसे ब्रह्म कुमार श्री बद्री विशाल जी इस कार्यक्रम के लिए खास उपस्थित हैं, ब्रह्म कुमारी सुनंदा दीदी जी, तृप्ति दीदी जी, ब्रह्म कुमार सुमंत भाई, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय से आए हुए वैज्ञानिकगण, उत्तर प्रदेश से आए हुए कृषि विभाग के अनेक अधिकारी, दीदी सुनीता पांडे जी, डॉक्टर पांडे जी और उपस्थित सभी किसान भाइयों एवं बहनों, ये मेरे लिए ही एक गौरव का विषय है कि ब्रह्म कुमारी जैसे एक संस्थान में, जिसका कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेक देशों में काम चल रहा है और अनेक लोगों के जीवन में एक जो निराशा का भाव आता है तो उसको दूर करने का बहुत बड़ा काम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, राजयोग की शिक्षा के माध्यम से देने में एक बहुत अहम कार्य ब्रह्मा कुमारी की ओर से चल रहा है। और ऐसे कार्यक्रम में आज भारतीय किसान संघ के नाते यहाँ बुलाया गया है और अपने विचारों को आपके साथ में साझा करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों के हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में ही और वैसा विचार किया जाए तो दुनिया में भी विकास के ऊपर चर्चा चल रही है, और यहां की जो बात आ रही है वो सर्वांगीण विकास की आ रही है, और उसमें जो बद्री विशाल भाई जी ने जो कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मन का अगर ठीक तरह से विकास हो जाता है, मन के अंदर सकारात्मकता आती है तो सभी चीजें बहुत ही अच्छे प्रकार से और आगे बढ़ सकती है, सब प्रकार की प्रगति मनुष्य की हो सकती है। इसी बिंदु को लेकर दुनिया में काफी गहन चर्चाएं विकास के विषय को लेकर चल रही है। विकास की अवधारणा क्या है, विकास की कल्पना क्या है, विकास माने क्या है, क्या आज जिस प्रकार की विकास की कल्पना हम कर रहे हैं वही सही मायने में विकास है या कुछ अलग प्रकार की बात है, क्योंकि जहां जहां भी हम डेवलप हुआ करके शब्द का प्रयोग करते हैं या डेवलपमेंट देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जिन पंच महाभूतों के आधार पर ये जो सृष्टि चल रही है उसका ही विध्वंस वहां हुआ है करके दिखाई देता है। और इस प्रकार की एक विकास की परिकल्पना की गई है कि उस विकास के परिकल्पना के माध्यम से दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष भी खड़े हो रहे। तो विकास की जो कल्पना की जा रही है वो सही है क्या, इसके बारे में दुनिया के जो सही मायने में चिंता करने वाले लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग हैं, उसका विचार करने लगे। क्योंकि आज की जो विकास की कल्पना है, यह विकास की कल्पना एकांगी इस प्रकार की है जिसका उल्लेख बद्री विशाल जी ने किया। क्योंकि जिस प्रकार के माध्यम से आज पूरे दुनिया का विकास हुआ है, वह एक प्रकार की खंडित इस प्रकार की जो विचार की परंपरा चली उसके आधार पर हुआ है। और वह हमारे भारतीय मूल चिंतन के आधार पर विचार करते हैं, तो भारतीय मूल चिंतन परंपरा में इस प्रकार का कभी भी खंडित विचार नहीं था। जो एक प्रकार की पाश्चात्य विचार सरणी हमारे पूरे दुनिया में छा गई है, उसमें यही बात आई कि मनुष्य यह सर्वश्रेष्ठ है और पूरी दुनिया मनुष्य के लिए है। जब एक बार यह भाव मन में आ जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो पूरी दुनिया मेरे उपभोग के लिए है, तो उस प्रकार का उपभोग कैसे लिया जा सकता है, अधिकतम उपभोग कैसे लिया जा सकता है, इसका ही विचार उस विकास के परिकल्पना से आता गया। इसके एकदम विपरीत, इसके एकदम अलग प्रकार की और भारतीय चिंतन परंपरा रही है कि भारतीय चिंतन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा। इस पृथ्वी पर जितनी भी जीव सृष्टि है, वो जीव सृष्टि सब एक परिवार है। जीवो जीवस्य जीवनम के आधार पर चलने वाला सूत्र है। और जो ये पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों के आधार पर केवल हमारा शरीर ही नहीं तो पूरे दुनिया का भी सृष्टि चक्र चलता है। इस प्रकार का विचार हमारे देश के मनीषियों ने रखा और यही जो एक प्रकार की समग्रता के साथ में विचार करने वाली दृष्टि थी, उसके आधार पर हमारा जीवन चला है। और इस प्रकार की एक समग्रता की दृष्टि लेकर ही हमारे देश में जितने भी काम हुए हैं, उसका मूल में आधार यही रहा है। जहां हम पंचमहाभूत की बात करते हैं, तो सब लोग ये जानते ही हैं कि आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन पांच तत्वों से ही पूरी जीव सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्य का शरीर निर्माण हुआ है। अगर ये शरीर पंचमहाभूत का है, ये सृष्टि पंचमहाभूत की है, तो उसका संतुलन रखना ये बड़ी बात है। और उस प्रकार का संतुलन रखते हुए अगर चलते हैं, तो पूरे दुनिया का चक्र भी आबाद रूप से चल सकता है। उसमें मनुष्य का अनावश्यक हस्तक्षेप यही उसका कारण बनता है। मराठी विज्ञान परिषद करके मुंबई में एक संस्था चलती है, उन लोगों ने एक प्रयोग किया कि मनुष्य का हस्तक्षेप अगर नहीं रहेगा तो किस प्रकार की बात हो सकती है। लगभग अभी 15-16 साल उस प्रयोग को हुए हैं, अभी वो चल रहा है। उन्होंने एक मनी प्लांट का जो पौधा था उसको विकसित किया और उसको विकसित करने के बाद में कांच के गोले में हवा बंद कर दिया। उसमें थोड़ा पानी पहले डाल के रखा, उसके ऊपर जो कीट थे उस कीट के साथ में भी उसको उसी प्रकार से बंद कर दिया और उसको सूरज का जहां से रोशनी मिल सकती है ऐसे एक कोने में रख दिया। आज हमको देखने को मिलता है कि वो पौधा भी जीवित है, उसके अंदर में जीव भी है और पूरी वहां की सृष्टि चक्र जो है वो आबादित रूप से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर केवल सूरज बाहर से आता है और उस सूरज का अगर ठीक प्रकार से हम उपयोग कर लेते हैं तो ये पूरी जीव सृष्टि हमको योग्य प्रकार से चलती है। इसमें केवल इतनी बात है कि मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हम जब सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, हम जब खेती की बात कर रहे हैं, तो हमको भी इसी विकास के दृष्टि के, इसी चिंतन के आधार पर खेती को सोचना पड़ेगा। और जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा था, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब बातें उसी समय अनेक ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने आती है। और फिर से हम सब लोग उसी बात को ध्यान में लेते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। एक प्रकार का हमारा यह पुनर्जागरण हो रहा है। इस पुनर्जागरण को लेकर हमको आगे बढ़ने की दृष्टि से बात करनी पड़ी। जो वर्णन किया 17वीं शताब्दी तक, सही मायने में इसी प्रकार का वर्णन हमको अनेक जगहों पर मिलता है। केवल अंग्रेजों ने लिखा ऐसा नहीं है, अनेक उस समय के जो ग्रंथ है, अनेक प्रकार की जो श्रुतियां हैं, इन सब में इस प्रकार की बहुत सारी समृद्धि की बातें हमको मिल जाती हैं। और भारत में सही मायने में जिस प्रकार का हम वर्णन करते हैं उस प्रकार का यह सोने की चिड़िया का देश उसी के कारण बना हुआ था। यह मूल तत्व को समझते हुए सब प्रकार की बातें होती थी और उतना ही उपभोग होता था, मगर पूरी तरह से सबका ध्यान उसमें रखा जाता था और जिसके कारण से खेती का भी विकास हो रहा था, उसके आधार पर जो समृद्धि आ रही थी वो भी थी। क्योंकि आज हम अपने देश का वर्णन करते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बड़े गर्व के साथ में भी बोलते हैं कि कृषि प्रधान देश है, मगर हमारा देश कृषि प्रधान है ये अर्ध सत्य है, या हम इसको कह सकते हैं कि हमको कृषि प्रधान बना दिया गया, भारत को कृषि प्रधान बना दिया अंग्रेजों ने। यहां का जो उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए था उसके लिए भारत को उन्होंने कृषि प्रधान बना दिया, कृषि पर निर्भर कर दिया। वास्तविकता दुनिया में सबसे अच्छे प्रकार का औद्योगिकरण होने वाला हुआ ऐसा देश भारत था। आज लोग कहते हैं कि कृषि के ऊपर की आबादी कम करनी चाहिए, एक तरह से विचार करते तो वो बात सही भी है, क्योंकि उस समय भी जब 17वीं 18वीं शताब्दी की जनसंख्या का विभाजन हम देखते हैं तो केवल 30-35% इतने लोग ही कृषि पर निर्भर थे, बाकी सभी लोग जो थे वो छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए थे, जो कृषि के लिए काम करने वाले उद्योग थे या कृषि के आधारित काम करने वाले उद्योग थे, व्यापार में लोग थे। मगर जैसे अंग्रेजों की सत्ता आई तो उन्होंने सबको इसको बंद कर दिया, इन लोगों के पास में कुछ बचा नहीं तो वो सब खेती पर आ गए और खेती पर का दबाव बढ़ गया, ये हमको महसूस होने लगा। इसको परिवर्तन करना ही पड़ेगा और उसको परिवर्तन करते समय हमको जो बात करनी पड़ेगी वो जो पंचमहाभूत के आधार पर तत्वों का विचार करते हुए खेती की विचार करने की बात जैसे रहेगी, उसी प्रकार से अगर हमारे देश के उस समय का जो कृषि का अर्थव्यवस्था का देश के अर्थव्यवस्था का वर्णन आता था वो था गौ कृषि वाणिज्यम। गौ कृषि वाणिज्यम ये हमारी अर्थव्यवस्था थी, केवल कृषि आधारित व्यवस्था नहीं थी, इसमें गौ माने पशुपालन था, पशुपालन के आधार पर खेती होती थी, खेती के आधार पर व्यापार होता था और इसके कारण से यह समृद्धि थी। इस सूत्र को समझकर करना पड़ेगा, इसको ही हमने केवल खेती से पशुपालन को अलग कर दिया, व्यापार को अलग कर दिया, केवल कृषि पर ध्यान दिया तो हमारी दुर्गति इतनी हो गई कि जो 30-32% हमारा हिस्सा था वहां से घटकर हम 1% से भी कम आ गए जागतिक जो विश्व व्यापार के इसमें। इसको अगर फिर से पुनः स्थापित करना है तो उसी दिशा में चलना पड़ेगा और ये जब हम करेंगे तो जो बात आ रही है हर हाथ को काम देने की दृष्टि से भी उसमें से रास्ता निकल सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अर्थचिंतक थे उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की और बात रखी है तो उन्होंने यही कहा था कि हमको मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमको प्रोडक्शन बाय मासेस चाहिए, जहां लोगों के अनेक लोगों से उत्पादन कैसे हो सकता है इसका विचार करने की आवश्यकता है। मास प्रोडक्शन करने से हमारे इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो एकांगी विकास की बात आ रही थी वो एकांगी विकास के तरफ चले जाएंगे। हमको तो इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए जिसका उल्लेख बद्री विशाल जी के भी और प्रेजेंटेशन में आया कि लघु और कुटीर उद्योगों के साथ में यहां के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात करनी पड़े, यानी खेती के साथ में लघु उद्योग कुटीर उद्योग की बात करेंगे तो उसमें से जिस प्रकार की विकास की हम परिकल्पना करते हुए जा रहे हैं उसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सालों से इस प्रकार के जैविक खेती कहो, प्राकृतिक खेती कहो, यौगिक खेती कहो, अनेक शब्दों से खेती का वर्णन करते हुए मगर मूल जो उसका तत्व है उसको ध्यान में रखते हुए खेती की बातें चल रही है। पिछले साल भारतीय किसान संघ ने अनेक संगठनों के साथ में मिलकर पंचमहाभूत के विषयों को लेकर हमने कुछ सेमिनार किए। जब 15-20 साल पहले 25 साल पहले हम इस प्रकार की बात रखते थे गोबर गोमूत्र और कुछ औषधि वनस्पति का उपयोग करते हुए अपने पौधों का संरक्षण करना है, पौधों का पोषण करना है तो बातें ध्यान में नहीं आ रही थी और वैज्ञानिक लोग भी उसको एक प्रकार से दकियानुसी बातें करके दरकिनार कर देते हैं। मगर जब ये पंचमहाभूत की बातों का चर्चा हुई, जिसमें भूमि इस विषय को लेकर चर्चाएं हुई, तो ध्यान में ये बात आई कि अनेक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का और उसमें मत व्यक्त किया कि विषय तो आप ठीक बता रहे थे, हम भी इसको इसी प्रकार से सोच रहे थे, मगर इसके पूछे का पूरा जो कार्य कारण भाव है, एक सृष्टि चक्र का भाव है, वो ध्यान में नहीं आ रहा था। अभी वो ध्यान में आने के कारण हम इस दिशा में आगे बढ़ने में हमको सुविधा हो, और अभी ये मानस परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा जब मानस परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे मानस परिवर्तन को और सबल करना, पुष्टिकरण करना, ये हम सब लोगों का मिलकर काम है। और मैं इस मामले में वास्तविकता तो ब्रह्म कुमारी जी संस्था के बारे में एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में ही और सब जगह पर लोग ज्यादा जानते हैं, मगर इस प्रकार के भौतिक विकास के दृष्टि से और मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के दृष्टि से जो प्रयास करते हुए, जो यौगिक खेती के प्रयोग सब जगह पर ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से हो रहे हैं, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा। ये विषय को लेकर जब हम बात करते हैं तो इसके खिलाफ बोलने वाले अनेक लोग हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की लॉबीज काम करती है, जिनको जिनको अपने स्वयं के वेस्टेड इंटरेस्ट है और जिनको इस प्रकार के एकांगी विकास के तरफ ही लेकर जाना है दुनिया को, केवल अपने रोटी पर ही घी मिले इस प्रकार का विचार करने वाले जो लोग हैं, ऐसे विचार करने वाले अनेक लोग हैं कि जो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने की दृष्टि से इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे कि सही मायने में क्या है, इसलिए उनका विरोध एक अलग प्रकार का है। इस प्रकार के दोनों लोग हमारे सामने खड़े हैं, और इस प्रकार से जैविक खेती का हो, प्राकृतिक खेती का हो, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि गौ आधारित पारंपरिक खेती की जो बात हम करते हैं, गौ आधारित जैविक खेती की बात करते हैं, वो सब दूसरे पक्ष में है। तो हम सब जो एक पक्ष में आकर काम करने वाले लोग हैं, इनको एक स्वर में बात करने की आवश्यकता रहेगी, हमको एक स्वर में बोलना पड़ेगा। और इस समय बोलना है तो उसको ध्यान में रखते हुए किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, किस प्रकार से उसको आगे लेकर चलना, इसका भी विचार करना पड़ेगा। ये हम सब लोगों को मिलकर इसका चिंतन करते हुए इसमें से ऐसा कोई तो भी रास्ता बनाने की आवश्यकता है कि जिसके आधार पर, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उस किसान के सहज रूप से वो बातें ध्यान में आ जाए और उसको उसका लाभ मिले। हमको अपने जो मूल सिद्धांतों को है, उस मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की बात करनी पड़ेगी। मगर जब अलग अलग शब्द आ जाते हैं तो कभी कभी मन में संभ्रम भी पैदा हो जाता है। कभी जैविक खेती की बात आएगी, कभी प्राकृतिक आ जाएगी, कभी कोई और आ जाएगी, तो जो किसान है वो किसान भी संभ्रमित हो जाता है और वो चलने वाला रास्ता है उससे भी वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और जब ये बात आती है इस प्रकार की संभ्रम की, तो जैसे मैंने कहा कि विरोधी खेमे के हमारे लोग हैं, वो विरोधी खेमे के लोग भी इस मौके का फायदा उठाकर गलत विमर्श खड़ा करने की बात करते हैं। हम सबका अच्छा अनुभव है, हम सब जब करता है खेती उसको तौर तरीके से समझकर, अगर आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, जो भी खेती का, यौगिक खेती का नाम दे, हम जब करते हैं तो उसमें से हमको परिणाम मिलते ही मिलते हैं। अभी हम बैठे थे तो राजू भाई एक उदाहरण बता रहे थे, कोई एक बहन ने वो टमाटर का उदाहरण दिया, तो उसने केवल अपने साधना के आधार पर उसके खेत में साधना की तो वो टमाटर के फूल गलना बंद हो गए और उसमें अधिक टमाटर लग गए। अब ये विज्ञान क्या है, इसके पीछे का भाव क्या है, ये खोजना पड़ेगा, इसके वैलिडेशन करना पड़ेगा। मगर ये बात आती है, हमारे भी अनुभव में आ जाती है। मगर जब हम इस प्रकार से अलग अलग स्वर में बात करते हैं तो हमारा विरोधी खेमा जो है उसका लाभ उठाता है और वो उठाकर कहता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति हमारी बन जाएगी। श्रीलंका का उदाहरण गलत नैरेटिव खड़ा करने की दृष्टि से प्रयास उसमें होता है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे देश के लिए बिल्कुल लागू होने वाला उदाहरण नहीं। श्रीलंका की जो अवस्था बनी वो कोविड के पहले उनके जो कुछ भी उन्होंने मेमोरेंडम किए होंगे, उसके आधार पर जो गलत तरीके से उन्होंने निर्णय लिए, फिर कोविड में उनका पर्यटन का जो उद्योग था वो समाप्त हो गया, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, उसके कारण उनको आयात बंद करनी पड़ी। तो आयात बंद करते समय उन्होंने पहला निर्णय किया कि हम रासायनिक खादों को बंद कर देंगे। ये गलत निर्णय था। इस प्रकार से कोई रासायनिक खाद में से एकदम दूसरे साल में आप जैविक का प्रयोग करोगे या इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको असफलता ही मिलने वाली। मगर बताते समय यह बताया जाता है कि इन्होंने इस प्रकार से जैविक खेती को अपनाया, ऑर्गेनिक को अपनाया, तो वो फेलियर हो गए। और भारत में भी ऐसा होगा, मगर भारत में ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत में धीरे धीरे हम सब लोग उस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर हमको एक स्वर में, एक साथ में आकर बोलना पड़ेगा। हमारा यह मंच व्यापक करने की आवश्यकता है। अगर हम उस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का सर्वांगीण विकास की बात हम कर रहे हैं, उस विकास के रास्ते पर हम बढ़ेंगे। और आजकल जो हैप्पी इंडेक्स की बात चल रही है, वो जीडीपी की जगह पर हैप्पी इंडेक्स का भी हम साथ में लेकर चलेंगे, उसके आधार पर भी अपनी जीवन की रचना करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो ये सर्वांगीण विकास के आधार में शाश्वत यौगिक खेती के यहाँ जो परिचर्चा हो रही है, निश्चित रूप से हम सब लोग उस दिशा से और लाभान्वित होते हुए और हमारे विचारों को परिपुष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता दिनेश कुलकर्णी जी को। अभी समय आ गया है आज की इस कॉन्फ्रेंस का भव्य उद्घाटन दीप प्रज्वलन के द्वारा। दीपक श्रद्धा का प्रतीक है, दीपक ऊर्ध्व गति की तरफ प्रयाण करने का हम सबको दिशा निर्देश करने वाला एक अच्छा टीचर है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ स्टेज पर पधारने के लिए यहाँ ऊपर आदरणीय राजकुमारी दीदी जी, लक्ष्मी बहन हासी, आदरणीय भारती बहन पालनपुर, ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई, आप स्टेज पर आएंगे और बाकी मैं जिसके नाम अनाउंस करूं वो नीचे भी दोनों तरफ दीपक रखे गए हैं, आप वहां पर पधारेंगे। राजेंद्र भाई पलवल, राजेश भाई दवे, दशरथ भाई, महेंद्र भाई, बाला साहेब भाई, विनोद भाई लाहोटी, जिग्नेश भाई, विनू भाई, कनु भाई, भरत भाई अहमदाबाद, करण भाई तपोवन, चंद्रेश भाई, विठल भाई, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, डॉक्टर जितेंद्र तोमर, प्रकाश पाटिल जी, बाबू भाई माणी, एमएलए सीहोर, नरेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई सिसोदिया, आदरणीय सुनीता बहन, शोभा बहन, शोभा बहन गोवा, दर्शना बहन, प्रियंका बहन, शिवानी बहन दांतीवाड़ा, सुनीता बहन, प्रतिभा बहन दिल्ली, सचिन भाई, डायरेक्टर कृषि जगत इंदौर, आप सभी पधारेंगे और इस दीप प्रज्वलन विधि को बहुत अच्छी तरह से सम्मानित करेंगे। सभी अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ऊपर हाथ करेंगे और इस दीप प्रज्वलन विधि में अपने आप को जोड़ेंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
उद्घाटन विधि संपन्न हुई, लेकिन कुछ क्रांतिकारी विचारों का उद्घाटन लेकर हम सभी के मध्य में पहुंचे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक वैश्विक प्रतिभा आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिज मोहन भाई जी, हम सब भाई जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन अभिवादन करते हैं। 1955 से आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुटे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी के आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की भगिनी शाखा राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के भी आप सेक्रेटरी जनरल हैं। देश और विदेश में होने वाली नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर आप अपनी वाणी का लाभ लाखों मानव आत्माओं को दे चुके हैं। रशिया, यूएसए, कनाडा, विश्व के कितने सारे देशों के मैं नाम कहूं, वहां सभी जगह आपने भ्रमण करके आध्यात्मिक विचारों का प्रचार और प्रसार किया हुआ है। आपने अनेक पुस्तकों की भी रचना की हुई है। आज के विषय पर हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन देने के लिए पधारे हैं आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी।
ओम शांति। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वर्णिम विकास का आधार शाश्वत योगी खेती में सारे भारत से पधारे हुए कृषि विशेषज्ञ और ब्रह्मा कुमारी इसके भी इस ग्राम विकास विभाग के बहन भाई जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, मंचासीन और सामने जो भाई बहन बैठे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से। अभी मैं आप जो भी बहुत ही विचारों को चलाने वाले वक्तव्य हमने सुने, उनको सुनते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि ब्रह्मा कुमारी इसकी मौलिक शिक्षाएं और उनका जो प्रभाव समाज के हर एक वर्ग पर पड़ रहा है वो कितना अब सबके सामने आ रहा है। सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्थान है और इसके अंदर जो विभाग हैं, पर्यावरण का है, नशा मुक्ति का है, कृषि का है, ग्राम विकास का है, अनेक विभाग हैं जो उस आध्यात्मिक शक्ति को कैसे हम अपने जीवन में लाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है वो प्रत्यक्ष देखने के लिए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाग है कि शाश्वत जो की खेती, जिसके बकायदा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इसका ट्रायल किया गया है, और आज भी मैं इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ आज MOU साइन हो रहा है, अनेक यूनिवर्सिटियों के साथ हो रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है। अगर हम इस बात को मूल आध्यात्मिक बातों से जोड़ें तो भारत की परंपरा में कहा गया है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा कहा जाता है कि सबसे उत्तम चीज है खेती करना, दूसरा नंबर लेन देन करना व्यापार, और तीसरा नौकरी का अर्थ है अधीनता, यानी अधीन होकर के चलना। तो आप जानते हैं सकल पदार्थ है जग माही, पराधीन सुख पावत माही। तो अधीन का मतलब है कि हम कर सब कुछ रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अब इसी बात को अगर हम खेती के साथ जोड़ें, एक खेती तो हम आज कर रहे हैं जिसकी बातचीत कर रहे हैं, खेती के अंदर बेटरमेंट कैसे लाई जाए, और बहुत सारी हमारी मजबूरियां हैं। अब देखिए जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे लंका वालों का, अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी, अनाज की कमी होती जाएगी, तो आप फर्स्ट क्लास खेती जो है उससे कैसे काम चलाएंगे। तो हमेशा जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घटती है, तो आपको हर तरीके से केमिकल लगाकर कुछ करके कीड़े मारकर सब कुछ खत्म करके बस अनाज पैदा करना है जो लोगों का पेट भर सके। तो कई सारे कॉन्स्टेंट्स इसमें आ जाते हैं। अच्छा, मोटी बात यह है जो हमको सिखाई गई है, आज हम विकास 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 और विकास की बात करते हैं। जरा सोचिए, जो भारत सोने की चिड़िया था वो विकास से बना था क्या? विकास करते करते सोने की चिड़िया बना था, या सोने की चिड़िया था और उसका ह्रास होते होते हमारी ये हालत हो गई है? सोचने की बात है। दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो ये है जो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ये कहता है कि हर चीज नई से पुरानी की ओर जाती है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अर्थात स्वर्णिम युग से सोने की चिड़िया से फिर हम चांदी की चिड़िया बन गए, तांबे की चिड़िया बन गए, लोहे की चिड़िया बन गए, प्लास्टिक की बन गए, अब वर्चुअल चिड़िया बन गए। एक तो यह है, और दूसरा जो दूसरी तरफ माना जाता है, जो मनुष्यों की मत है कि इंसान जो था पहले इंसान ही नहीं था, कुछ और था, धीरे धीरे बहुत विकसित होकर आज वो इंसान बना। अर्थात एक कह रहा है अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, और दूसरा दृष्टिकोण कह रहा है हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब पहले तो आपको ये फैसला करना है, अगर सचमुच आप शाश्वत योगिक खेती तो क्या शाश्वत योगिक जीवन जीना चाहते हैं, तो बुद्धि क्या कहती है कि क्या हर चीज नई से पुरानी होती है या पुरानी से नई होती है। आज का विश्व जो भी प्रयास कर रहा है, जितने भी प्रयास कर रहा है, वो क्या कर रहा है? पुराने को नए बनाने के। कभी कहते हैं सब धर्म एक हो जाए, अरे भाई वृक्ष की शाखाएं बन गई, अब वो तो बट रहा है और भी बढ़ते जाएंगे। कोई चीज नई से पुरानी होगी तो और पुरानी होती जाएगी। अब हम खेती की बात लेते हैं, आप जितने भी प्रयत्न कर ले, जितने भी प्रयत्न कर ले, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कुछ तो हाथ पैर मारेंगे। अब ये बताइए कि प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें फ्लड आता है, सूखा आता है, अर्थक्वेक आता है, क्या आप देख नहीं रहे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और उनके कारण से क्या खेती, ऐसा भी दिन आ सकता है जिस प्रकार से ये बढ़ती जा रही हैं मनुष्यों के खराब कर्मों के कारण, कि आपकी कितनी भी खेती इकट्ठी कर ले, कितने भी गोडाउन बना ले, कितने भी साइलो बना ले, वो खत्म हो सकती है। दूसरी बात, लोभ, जो खेती होती भी है उसको जो व्यापारी लोग हैं किस प्रकार से वो उसको प्रिजर्व करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, आजकल एयर कंडीशन्ड वेजिटेबल की दुकानें बनी हैं, बड़ी खुशी से लोग जाते हैं कि बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, पर उनका भाव क्या होता है कि सब्जी, पुरानी सब्जी बेची जा सके क्योंकि वो ज़्यादा देर वहाँ कायम रहती है। जब वो नहीं थे तो हम रेडी वाले से ताजी सब्जी लेते थे, तो कहने का भाव ये धोखा नहीं है। इसलिए आउट ऑफ सीजन चीज, फिर धन के कारण से जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उनको नहीं मिलती, उसको दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है, कच्ची को तोड़ा जाता है, क्या नहीं किया जाता। तो ये जो हम रॉन्गफुल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं लोभ के कारण से, कई कारणों से, उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, तो जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो आप फिर अगर आप उसी बात पे आएंगे कि हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर से ऊपर की ओर, आप देखेंगे जितने मर्जी प्रयत्न करते जाएं, आज का मानव सर्वांगीण तौर पर नीचे जा रहा है। कितना भी उसका बुद्धि लगा लो, कितना भी पूर्वजों की सारी विजडम हमारे पास है वो लगा लो, नीचे जा रहा है। इसलिए अगर हमको सचमुच स्वर्णिम की ओर जाना है, आप कहेंगे एक ओर आप कह रहे हैं नीचे जा रहा है, दूसरी ओर सडनली स्वर्णिम की ओर जाना है। आप ये नोट करेंगे कि पुरानी चीज को कभी नया नहीं बनाया जा सकता। एक बूढ़े आदमी को आप बच्चा नहीं बना सकते, कुछ भी कर लो। हाँ, बूढ़ा आदमी बच्चा बन सकता है अगर आप ये जाने कि समय आगे की ओर जाता है, समय कभी पीछे की ओर नहीं जाता, समय कभी रुकता नहीं है। अब आगे की ओर जाने का क्या अर्थ है, आप व्यक्ति प्राण शरीर छोड़ दे बच्चा बन जाएगा, वो समझे मैं पीछे वाला बच्चा बन जाऊं, वो होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से इस सृष्टि चक्र को आप देखेंगे, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, भगवद गीता भी कहती है कि जब नए से बहुत पुराना होते होते बहुत पुराना हो जाता है तो उसको नए करने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। आप सारी दुनिया में देख रहे हैं हर विधि से प्रयास किया जा रहा है इसको नया करने का, होगा कैसे। हम नाम रख लेंगे न्यू दिल्ली, न्यूजीलैंड, न्यू मेथड, या वो सब न्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि पुराने में नया हो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई है, वो क्या है कि अति के बाद इति होती है। जब किसी चीज की एक्सट्रीम हो जाए फिर उसका अंत भी आता है। ऐसे नहीं कि पुराना होते 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 अब अति दुख तो हो गया है, सारे धर्म ग्लानी के चिन्ह हो गए हैं। अगर कोई आंखें खोल कर देखे तो ये जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अगर ये हमारे देश में आ जाए, अगर ये सारे विश्व में आ जाए तो क्या बचेगा, आपकी शाश्वत खेती कहाँ जाएगी, आपके ये धर्म का कहाँ जाएंगे। उस चीज को अगर आप देखेंगे तो सिल्वर लाइनिंग ये है कि कोई ऐसा भी है क्रिएटर जिसको हमने भूल करके अपने आप को एक क्रिएटर मान लिया है और उसके साथ हम डिस्कनेक्ट हो गए। योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर हम योग टूट जाए, हमारा वियोग हो जाए और उसके बाद हम भोग में आ जाए तो सत्यानाश ही हो जाता है। तो योग जरूर है, खेती भी योग से होती है। उसमें आपको धरती भी चाहिए, उसमें रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन हर चीज का योग। अगर उसमें से एक एलिमेंट बिगड़ जाएगा खेती बिगड़ जाएगी, लेकिन उससे बड़ा योग ये है कि शरीर और आत्मा का योग हमारा ठीक ठाक है। और आत्मा और परमात्मा जो क्रिएटर है, जिसने जिसके सारी प्रकृति जिसके कंट्रोल में है, उसके साथ योग ठीक है। यही प्रकृति हमारे सोना उगलती थी, यही प्रकृति हमारे साथ कॉपरेट करती थी, प्रकृति हमारे को देने वाली है, और आज हम देखेंगे प्रकृति का दोहन करते करते आज प्रकृति भी हमारा अपोजिशन करती है। इसलिए शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अगर गौर से देखें तो भारत स्वर्णिम सोने की चिड़िया कब था। सिंपल बात है, पहली बात यह है कि सारा कुछ मनुष्य के मन से शुरू होता है। आज हमारे मन वो नहीं रहे जो स्वर्णिम भारत में थे। स्वर्णिम भारत में कैसे लोग थे, कैसे उनके मन थे, उसकी निशानियां आज हैं देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में। अब आप सोच लीजिए, उनको हम देवी देवता कहते हैं, अर्थात वो देने वाले थे। ठीक है, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमें ये सिखाया जाता था जो आए उसमें फायदा है, जो जाए उसमें नुकसान है। मैं ब्रह्मा कुमार किस लिए बना, मुझे पता लगा इसका उल्टा है, देने से ही बढ़ता है। तो देवता लोग ये जानते थे, आज हम सब लोग हो गए देवता। जैसे भाई साहब भी कह रहे थे कि ये अप्रोच के सारी दुनिया मेरे लिए बनी है। अब आप नोट करिए, इस विश्व में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। चारों तरफ गौर करके देख लीजिए, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ। आप यहां बैठे हैं हॉल में, ये बल्ब लाइट दे रहा है, किसको दे रहा है, अपने को दे रहा है या दूसरे को दे रहा है? जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये कुर्सी अपने को आराम दे रही है या दूसरे को दे रही है? सूर्य अपनी रोशनी और गर्मी दूसरे को देता है या खुद को? और भारत में तो कहा जाता है कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, ये भी कृषि का मामला है। इसलिए पहली बात हमारी अप्रोच है टू गिव अप्रोच। अगर हम देने की अप्रोच रखेंगे तो देने से भरपूर हो जाएंगे, और लेने की अप्रोच रखेंगे तो कंगाल हो जाएंगे। अब आप देखिए, सिखाया जाता है सम्मान दो सम्मान मिलेगा, प्रेम दो प्रेम मिलेगा। तो पहले देना है मिलेगा तो अपने आप ही, बीज बो तो फल मिलेगा। कोई कहे फल मिल जाए तो मैं बीज बाद में बोऊं, ये तो होने वाला नहीं है। इसलिए अगर हमको खेती तो एक ऐसी चीज है, अगर आप स्वर्णिम युग की खेती का सोचें तो आप हैरान हो जाएंगे। वहां तो बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि धरती उपजाऊ है, उसमें किसी प्रकार का वीड्स नहीं है, घास फूस नहीं है, खाली आपको प्लेन से बीज डालना है। और सीजन के अनुसार जैसे हर चीज फटाफट उग जाती है, वहां तो खेती एक बहुत ही एक खुशी का विषय था, एक साइड बिजनेस था। आज तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये करो वो करो, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। एक तो देने का अप्रोच रखें, और देने में भी ये नहीं है आप डर जाए कि हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, नहीं। सूर्य रोशनी किरण ही देता है, सब अपना कंट्रीब्यूशन करता है। हम तो चैतन्य हैं, तो हमें क्या करना है? भगवान कहता है अपना दृष्टिकोण बदलिए, अपनी मनोवृत्ति बदलिए, योगी बनिए। योगी का मतलब क्या है कि आई एम कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, मैं सारे ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्टेड हूं, और मुझे अपने कनेक्शन से देने का भाव रखना है। उसके लिए कहा जाता है शुभ भावना और शुभ कामना, यह है कर्मों की खेती। वो खेती दूसरी है जो कहा गया उत्तम खेती, अर्थात कर्मों की खेती, और कर्मों में भी क्वालिटी होती है। जैसे खेती में आप एक कॉलीफ्लावर बोते हैं तो एक फल मिलता है, एक गोभी से एक गोभी। मटर बोएंगे तो एक बीज से बहुत सारे मटर, लेकिन एक सीजन के लिए। अगर आप सेब बोएंगे, बीज एक ही बोया है, आपको वर्षों तक सेब मिलेगा, कौन सा कर्म अच्छा है? इसी प्रकार से मनुष्य के कर्म भी बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं, और भारत इस देश इसके लिए मशहूर है। तो हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की खेती का अर्थ है कर्म संकल्प से पैदा होता है। अगर हम सब लोग एक ही संकल्प कर लें, हमने शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, शुभ सोचना है। हम अपने घर के बाहर स्वस्तिका बनाते हैं शुभम लाभम, लेकिन लाभम को लोभम कर देते हैं। तो वो जो अप्रोच है उसको चेंज करेंगे तो मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारी यही करती हैं। और इसी वजह से चाहे वो शाश्वत खेती हो, चाहे वो नशा मुक्ति हो, कोई भी हो उसमें इफेक्टिव है, चाहे वो एजुकेशन हो। तो हम सब चाहते हैं कि आप जहाँ कृषि विकास की बात भी करें, लेकिन आए हैं तो यहाँ मेरा ख्याल है योग के कार्यक्रम रखे गए होंगे, उनमें अवश्य भाग लें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज दिन तक हम सभी ने गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, वर्ष चल रहा है मिलेट्स का, तो मिलेट्स की खेती के बारे में कई बारी सुना है, लेकिन आज आपके द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ वो है कर्मों की खेती। और इस खेती के द्वारा कैसे हम अपने जीवन को उपजाऊ बनाएं, वह कला आपसे जो आपके द्वारा सीखने को मिली है, हम आपका तहे दिल से तालियों से धन्यवाद करते हैं। हम सभी के बीच में अपनी शुभेच्छा लेकर के पधार रहे हैं आदर अभी हम सभी एक बहुत ही सुंदर रचनात्मक विधि इस मंच पर देखने जा रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वह भी दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी के साथ। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी 5 साल के लिए यह कृषि क्षेत्र के अंदर रिसर्च के प्रति एमओयू करने जा रहे हैं। आपने आप लाएंगे यहाँ पर मंच पर। हाँ जी, हाँ मैं तो उसके प्रति अपने शुभ विचार रखने के लिए जा रहे हैं भ्राता डॉक्टर सी एम मुरलीधरन जी, डायरेक्टर रिसर्च सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर। आप अपने शुभ विचार पहले देंगे और उसके बाद मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर होंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योगिक खेती में पधारे सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति श्रद्धा कृष्णनगर दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी डॉक्टर आर एम चौहान साहब अस्वस्थ होने के कारण इस महत्वपूर्ण समारोह के उद्घाटन सत्र में अपनी सहभागिता नहीं कर सके, जिसका उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। मैं एक लंबा भाषण के लिए तैयार करके नहीं आए, बट एक मिशन लेके आए मेरे पूरा वैज्ञानिक साथियों के साथ। 2010 में पूरा गुजरात में दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी योगिक खेती का संशोधन शुरू किया। 2013 में हम कुछ अनुकूल इसका रिजल्ट मिला। ये आगे बढ़ाने का सौभाग्य आप सभी लोगों के साथ हमको मिला, इसीलिए हम बहुत बहुत आभारी हूं। हम बहुत वादा के साथ हमारा ये वादा करता हूं, ये योगिक खेती आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश जरूर करेंगे। इसको एक वैज्ञानिक अभिगम देने के लिए, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, आज किसी के पास कुछ लेके जाओ, दे रिक्वायर डाटा, वो पूछेगा भाई इसमें क्या आधार है। ये आधार हमको करना है, इसलिए हमने पूरा एक टीम, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, खेती क्षेत्र विद्या के एग्रोनॉमिस्ट, वो सभी लोगों के एक टीम हमने बनाया है। ये टीम अभी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोग एंड आशीर्वाद से हम जो वैज्ञानिक एंड यौगिक दोनों ब्लेंड करके कैसे इसको आगे बढ़ाए, इसके पूरा कोशिश जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसको हमको चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कृषि एक जीवन प्रणाली है और प्रत्येक पौधे संवेदना होती है, जिसमें फलस्वरूप पौधे स्वयं का प्रतिभाव भी देते हैं, जिसकी वैज्ञानिक दृष्टि भी पुष्टि हो चुकी है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर सरदार कृष्णनगर दांडीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय सरदार कृष्णनगर एवं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मंडोवी ने साझा मिलकर शाश्वत यौगिक खेती में सन 2010 से लेकर सन 2013 तक विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्म में अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया था, जिसके परिणाम भी आशानुरूप प्राप्त हुए थे। लेकिन इस परिणामों को पुनः वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की आवश्यकता है, इसलिए शाश्वत यौगिक खेती के परिणामों को अग्रिम चरण में ले जाने के लिए एवं वैज्ञानिक पुष्टिकरण की हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन तथा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोंडोवू एवं सरदार कृष्णनगर दांडीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय सिद्धांत के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन करने जा रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आज इस संगोष्ठी के में मुझे सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए मैं सरदार कृष्णनगर दांडीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय सरदार कृष्णनगर की ओर से आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
हम सभी इस दिव्य विधि के अंदर अपने आप को भी संकल्पों से जोड़ेंगे। अभी यह जो MOU होने जा रहा है, मैं निवेदन करती हूँ, नम्र अनुरोध है आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर मुरलीधरन जी, इस पवित्र विधि को अभी संपन्न करने जा रहे हैं। हम सभी तालियों से इस MOU के अंदर अपने आप को जोड़ेंगे। दो देश की सीमाओं के MOU से हमने कई बार देखे हैं शांति के लिए, दो समाज के MOU हम सब ने देखे हैं अलग अलग विधियों की नवीनता के लिए, लेकिन आज MOU होने जा रहा है कृषि क्षेत्र के अंदर रिसर्च के लिए। वाह, क्या यह शुभ वेला और शुभ घड़ी है जो आज से दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान जुटकर आध्यात्मिकता से कैसे कृषि के अंदर एक क्रांति लाने का शुभ प्रयास करने जा रही है। हम सभी भी बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे मेमोरेंडम के समय हम सब की उपस्थिति और साक्षी हैं। हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मुरलीधरन जी तथा भ्राता दिनेश भाई कुलकर्णी जी आगे पधारेंगे, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, आदरणीय राजू भाई जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आप सभी सहभागी हैं इस MOU के अंदर। अब आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी से नम्र विनंती है कि शॉल और प्रसाद देकर के आदरणीय डॉक्टर दिनेश कुलकर्णी जी का अभिनंदन करेंगे। भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, भगवान के घर की यह पवित्र शाल, यह सिर्फ शाल नहीं है, सुरक्षा कवच है, परमात्मा के पवित्र आशीर्वाद है। प्रभु प्रसाद देकर के दोनों ही वरिष्ठ भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम सभी अपनी तालियों का साथ देते रहे और इस सुंदर विधि को निहारते रहे। आप सभी को भी अंत में भगवान के घर की बहुत सुंदर याद सौगात मिलेगी, तो इसलिए कोई भी जाएंगे नहीं, सारी सभा को मिलेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बी के भाई बहनों के लिए सौगात आज नहीं है, सिर्फ आए हुए जो मेहमान हैं सभा में उपस्थित, आप सभी को भी प्रसाद और सौगात प्राप्त होगा लास्ट में। आज के इस उद्घाटन सत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी हम सब के बीच में से छुट्टी ले रहे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से भाई साहब का अभिनंदन करते हैं। साधुत्व सिर्फ वस्त्रों से नहीं, परंतु विचार, वाणी और व्यवहार से प्रसिद्ध होता है। अपने साधुत्व को सबके सामने पूर्ण प्रकाशित करने वाली एक दिव्य हस्ती आज मंच पर उपस्थित है, आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा, शाश्वत योगी खेती की योजना सारे ही भारत देश के अंदर कार्यान्वित करने के लिए अनेक अभियान, अनेक सम्मेलन, अनेक यात्राएं और प्रदर्शनियां जिनों के निर्देशन के अंदर हुई है, ऐसी विरल हस्ती आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी। मेहसाणा और उसके आसपास के 36 से भी अधिक शहरों के अंदर ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र और 800 से भी ज्यादा गांव के अंदर ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशालाएं, 20,000 से भी ज्यादा निर्व्यसनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां तैयार करने का जिन्होंने बहुत ही अच्छा श्रेय धारण किया हुआ है, ऐसी आदरणीय सरला दीदी जी हम सभी को शुभ प्रेरणाएं देंगे।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के सानिध्य में सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत योगिक खेती इस परिचर्चा के शुभ उद्घाटन मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे अखंड बाल ब्रह्मचारिणी तपस्विनी परम श्रद्धे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिन्हों के जीवन का एक ही महामंत्र है साधना और सेवा का बैलेंस रख समाज के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति लाकर के लोगों को सही जीवन जीने की दिशा दिखाना, ऐसे कर्मठ योगी आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी, साथ ही साथ देश का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग, जिसको हम देश की रीढ़ की हड्डी के समान कृषक वर्ग कहते हैं, ऐसे किसानों के मसीहा, कर्तव्यनिष्ठ, जो समग्र भारत देश के किसानों के साथ बहुत आत्मीयता से मिलते रहे हैं, जिन्हों के अंदर किसानों को संगठित रूप में उनके अंदर वैचारिक क्रांति ला करके न केवल कृषि के प्रति परंतु सशक्त बनाने के नए नए विचार, नई नई योजनाएं, जिनको लेकर के आप समग्र भारत देश में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे अति सम्माननीय माननीय भ्राता दिनेश भाई कुलकर्णी जी। साथ ही साथ जो एक सुंदर समारोह हम आप सब ने देखा, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने 2007 में भी दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू किया और 5 वर्ष रिसर्च किया, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। किसी भी क्षेत्र में, कृषि में भी, हर चीज को वैज्ञानिक पद्धति पर जब खरा उतरता है तब किसान और समाज उसको स्वीकार करता है। तो इस शाश्वत यौगिक खेती का रिसर्च हमने दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में किया, पुनः आज इसका एक नए रीति से हम एमओयू साइन किया है। मुझे ये आशा नहीं, दृढ़ विश्वास है कि भारत की जो प्राचीन कृषि संस्कृति, इसको यहां पर नाम दिया है शाश्वत यौगिक खेती। जैसा कि बद्री विशाल भाई ने इस बात को स्पष्ट किया कि यौगिक खेती का अर्थ है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई भारत की वो प्राचीन प्राकृतिक कृषि पद्धति, जिस कृषि पद्धति के द्वारा कृषक और ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास हो, वो है यौगिक खेती। और उस यौगिक खेती के रिसर्च के लिए दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय से पहले हमारे वाइस चांसलर चौहान साहब स्वास्थ्य शारीरिक ठीक ना होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके, परंतु भ्राता डॉक्टर सीएम मुरलीधरन जी आप हमारे बीच उपस्थित हुए और एक सुंदर समारोह का आयोजन जो हम आप सब ने देखा। साथ ही साथ मंच पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई, सुमन भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन, और मंच का सुंदर संचालन करने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन, ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई, और सभा में उपस्थित मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहाँ त्रिवेणी संगम है। एक तरफ है हमारे कृषि वैज्ञानिक, दूसरी तरफ है हमारे कृषि अधिकारी, जिन्हों के पास इन किसानों के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए नई नई योजनाएं और आर्थिक मदद देकर के किस प्रकार उस वर्ग को सशक्त किया जाए, इस प्रकार की योजनाएं लेकर समाज में सेवा करने वाले कृषि अधिकारी, और तीसरी तरफ हैं आप और हम सब। आप में से काफी हैं जो कृषि क्षेत्र से संबंधित कृषक भी होंगे, कई एनजीओस के डायरेक्टर, उनके अधिकारी और मेंबर्स हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण वर्ग चौथा, वो है हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मैं आप सभी का प्रभाग की तरफ से ये शुभकामना दे रही हूं। मैं जब सभी वक्ताओं का वक्तव्य सुन रही थी, मुझे हर एक के बारे में कुछ ना कुछ कहने के विचार आ रहे हैं, लेकिन समय की मर्यादा के कारण हम फिर आपस में जब मिलेंगे तब उन विचारों का लेन देन करेंगे। पहली बात जो हमारे कुलकर्णी भाई ने बहुत सुंदर विचार रखे कि केवल कृषि नहीं भारत का औद्योगिकरण था। मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रभात का लक्ष्य केवल केवल यौगिक खेती नहीं है, लेकिन यौगिक खेती का संबंध इन सभी क्षेत्रों के साथ में है और प्रभाग उन सभी क्षेत्रों में खूब निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा है। चाहे हमारा श्वेत क्रांति हो तो हम लोग दूध के क्षेत्र में भी सहकारी दूध मंडलियों के साथ में उनके विक्रेताओं के साथ मिलकर के गाय को किस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जाए उनके साथ में योग के प्रयोग करने का, मैंने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रभाग बहुत सुंदर सेवाएं दे रहा है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण है, जैसा कि भाई सब ने भी कहा व्यसन मुक्ति है और जल संरक्षण। आज के देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, कहते हैं अगर हमने जल संरक्षण नहीं किया, जल को नहीं बचाया तो 2030 तक शायद व्यक्ति को पीने के लिए पानी भी न मिले। जल धीरे धीरे नदी कुएं तालाब से आज बोतल में आ गया है और कल शायद सिरिंज में आ जाए, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। तो प्रभाग इसके लिए भी कृत संकल्प है, क्योंकि सबसे अधिक से अधिक जल कृषि में यूज होता है, तो कृषकों को कि कम जल से हम अच्छी खेती किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए भी सेवा योजना तैयार की गई है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी प्रभाग बहुत सुंदर सेवाएं कर रहा है। तो जो आज का विषय है कि सर्वांगीण विकास का आधार शाश्वत यौगिक खेती है, इसका इन सब के साथ कनेक्शन है। आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर बातें कही, बहुत सूक्ष्म और गहराई से उन्होंने उस बात को स्पष्ट किया कि अगर किसान यौगिक खेती करता है और प्रकृति उसका साथ नहीं देती है तो क्या खेती यौगिक खेती से उसको क्या फायदा हो सकेगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रभाग, फिर से रिपीट करती हूं, केवल यौगिक खेती का प्रशिक्षण नहीं देता है, लेकिन इसका पहला पहला लक्ष्य है कि हम अपने ग्रामीणों को, अपने कृषकों को आध्यात्मिकता के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाकर के उन्हों को राजयोग के द्वारा सशक्त बनाएं, उन्हों का मनोबल बढ़ाएं। जब तक उन्हों का मनोबल नहीं बढ़ता है, जब तक उनकी चिंतन की धारा नहीं बदलती है, तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को सफल नहीं कर सकते हो, यौगिक खेती भी सफल नहीं होगा। तो उसका मूल आधार है, समझो अगर प्राकृतिक परिस्थिति आती है तो आज हमारे किसान जब ऋण हो जाता है, खेती से नहीं उत्पादन होता है तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो प्रभाग उस दिशा में भी बहुत सुंदर कार्य कर रहा है कि पहले इस देश का किसान सशक्त बने। इसीलिए कहा जाता है यौगिक खेती को हम कहते हैं ऋषि कृषि। जो पहला कृषक था वो ऋषि था, इसलिए वहां की खेती उत्तम थी। ऋषि से मतलब तपस्या नहीं करता था, ऋषि से मतलब जो भाई साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, वो सबके साथ में कनेक्टेड होते हैं, सबके लिए शुभ भावनाएं होती हैं, वो भावना उस ऋषि के अंदर थी। प्रभाग का लक्ष्य है हम आज भी अपने उन कृषकों के अंदर वो भावनाएं क्रिएट करें कि आप लेवता नहीं हो, आप देवता हो। और हमने इस चीज को महसूस किया है, जब प्रभाग ने ये एक्टिविटीज की हैं तो उसके हमें प्रैक्टिकल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। कृषकों के विचारों में परिवर्तन आया है और योग से वो मनोबल बढ़ा है जो विपरीत और विकट परिस्थितियों के अंदर वो अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को संभाल सके हैं। तो प्रभाग का जो आज का विषय है ये बहुत ही गहरा और मंथन करने का विषय है। मैं आप सबसे ये विनम्र अनुरोध करूंगी कि हम केवल विषय को शब्दों में ना लेकर के इसकी जो वास्तविकता है, जिसकी हमारे समाज को आवश्यकता है, उस पर हम सब जो इतना बुद्धिशाली वर्ग यहाँ पर एकत्रित हुआ है, मनन मंथन करके उन एक्टिविटीज को प्रैक्टिकल में लाएंगे और भारत को स्वर्णिम बनाने में हम सब सहयोगी बनेंगे। और ये कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु पुनः बनेगा। उस पुनः बनने में हम आप सब की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु आवश्यकता है हम सब साथ में मिलकर के इस भूमिका को अदा करेंगे तो अवश्य ही ये स्वर्णिम भारत बनेगा। एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, जो हमारे कुलकर्णी भाई ने कहा कि अलग अलग बहुत सारी पद्धतियां अभी निकली हुई हैं और ये राइट बात है। किसान कंफ्यूज है, मूंझा हुआ है कि ये राइट है या ये राइट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का ये लक्ष्य है, चाहे वो कोई भी अपनी पद्धति जैविक कहते हो या प्राकृतिक कहते हो, लेकिन उसका जो उद्भव स्थान है वो है हमारा वृक्ष आयुर्वेद। जीवामृत बीजामृत ये किसी व्यक्ति की रिसर्च नहीं है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको ही हमने लेकर के व्यक्ति ने अपने रिसर्च के नाम पर लगा दिया। मैं ऐसा कह दूं कि ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का रिसर्च है, नहीं, हमारे वृक्षावेद के अंदर में हमारे ऋषि मुनियों ने जो कृषि पद्धति सिखाई है वही कृषि पद्धति पुनः हम और आप पहले उसको समझें और एक होकर के एक ही कृषि पद्धति को समग्र देश के अंदर में फैलाएं, तो ये आध्यात्मिकता के बल से संभव है। आप इस बात को समझते हैं? आप इस बात को समझते हैं कि जब हम सब इस बात में एक हो करके और इस देश के अंदर आध्यात्मिकता के माध्यम से ये क्रांति लाएंगे तो ये देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, स्वर्णिम बनेगा, इसमें दो मत नहीं है, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। अंत में आप सभी को प्रभाग की तरफ से मैं खूब खूब दिल की शुभकामनाएं और मंगल कामना देती हूँ कि इस लक्ष्य सिद्धि में आप सब सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।
आभार दीदी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से वैचारिक स्पष्टीकरण सभी के सामने रखा। अभी हम सभी के बीच में एक ऐसा दिव्य अलौकिक शांत और सौम्य व्यक्तित्व उपस्थित हैं कि जिनको देख कर के भी जीवन की बहुत अच्छी प्रेरणाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों से सिखाना सहज है, लेकिन कर्मों से सिखाना वो मेहनत की बात है। अपने श्रेष्ठ कर्मों से जिन्होंने अनेकों को जीवन जीने का श्रेष्ठ संदेश दिया है, ऐसी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सभी के मध्य में उपस्थित हैं। आपसे हम आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। डॉक्टर निर्मला दीदी जी 62 से इस आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर चल रहे हैं। MBBS की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप सोचिए, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद जिंदगी का ये निर्णय लेना कि मुझे साधुत्व के मार्ग पर, आध्यात्मिकता के मार्ग पर अपने जीवन को चलाना है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसी सिद्धि की धनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, 71 से लेकर 78 तक आपने यूके, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मॉरिशियस जैसे देशों के अंदर अपनी सेवाएं दी और ब्रह्मा कुमारी संस्था की विचारधारा को वहां के देशों के अंदर प्रवाहित किया। 78 से लेकर के 30 साल तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के कई देश और टापू के अंदर भी
ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स खोलने के आप निमित्त बने। 2009 से आप ज्ञान सरोवर परिसर के अंदर रह करके डायरेक्टर के रूप में पूरे ही ज्ञान सरोवर का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल चीफ हैं। आशीर्वचन प्राप्त करेंगे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। ज्ञान सरोवर के आंगन में आप सभी का फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मंच पर उपस्थित आज के वक्तागण तथा सभा में उपस्थित सभी भाई बहने, जैसे आपने सुना कि शाश्वत योगिक खेती का आधार योग है, तो इसलिए आप में से जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया है वो जहाँ 3 दिन में जरूर करेंगे और बाद में भी अपने शहर या गांव में जाकर उसका अभ्यास करेंगे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। क्योंकि जब तक हम योग का प्रयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ दूसरी रीति से खेती करेंगे तो उसका फल इतना अच्छा नहीं निकलने का। इसलिए अपने को योग का प्रयोग जरूर करना है और साथ साथ ये कर्म क्षेत्र पर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दान पुण्य तो करते ही है, परंतु हर आत्मा को जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उन्हों को सुख देना है। जितना उनको सुख देंगे आप सुख पाएंगे और इसके लिए अपने में कई गुण धारण करने पड़ते और विकारों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह द्वेष वैर ईर्ष्या आलस्य आदि विकारों से हम औरों को दुखी देंगे और हमारा लक्ष्य है सबको सुख देना। तो योग के द्वारा आप इन विकारों को छोड़ सकेंगे और सद्गुण धारण कर सकेंगे, तो इसलिए आप श्रेष्ठ मानव या देवता बनना चाहे तो इसका प्रयोग अपने जीवन में भी करना है। और मैं आशा रखती हूँ कि आप अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे और अपनी खेती भी सुंदर करेंगे। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी ने हम सभी को योग के प्रति प्रोत्साहित किया है। आभार विधि सुनने से पहले 2-3 सूचनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ।
ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक दिव्य औषधि, अमृत औषधि, वो है राजयोगा मेडिटेशन। कल सवेरे से ही आप सभी के पास दिनचर्या का कागज तो है ही है, फिर भी याद दिलाती हूँ, कल सवेरे 6:30 से 8 बजे तक ब्रह्मा कुमारी संस्था के हरेक कार्यक्रम समय पर सिद्ध होते हैं। कृपया कोई भी लेट नहीं करेंगे। 6:30 बजे सवेरे हम सभी इसी हॉल में पहुंचेंगे। जितने भी दिन आप यहाँ रहेंगे, राजयोग शिविर, दिन भर की दिनचर्या तो आप अवश्य अटेंड करेंगे ही, क्योंकि आए ही इसलिए हैं। लेकिन सवेरे का सत्र, ब्रह्म मुहूर्त का सत्र अति महत्वपूर्ण है। दूसरा, अभी आभार विधि संपन्न होने के बाद आप सभी यहाँ ही बैठे रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहने भी, सेवाधारी भी, टीचर्स बहने भी, सब यहाँ ही रहेंगे। आप सभी को भगवान के घर की पवित्र भेंट, गिफ्ट मिलेगी। और जो आए हुए आप सभी मेहमान हैं, वो सब भी यहाँ ही रहेंगे। आज भगवान के घर की पवित्र भेंट स्वीकार करके ही जाएंगे। अभी आभार विधि का बार संपन्न करने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी। पिछले 37 वर्ष से आप इस आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग से जुटे हैं। 17 वर्ष से आपने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। आप कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। 15 से भी अधिक कृषि यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने यह शाश्वत यौगिक खेती के लिए प्रेजेंटेशन दिया है। सारे ही भारत देश के अंदर आप इसी विचारधारा को लेकर के ट्रेनिंग भी कराते हैं। ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी।
ओम शांति। अपने अनंत शक्तियों से, दिव्य गुणों से संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करने वाले परमपिता, परम कृषक, परमपिता परमात्मा को सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, और साथ में उनका साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा। और पीछे आप देख सकते हैं कि इस यज्ञ के आदि जो हमारी दादियां, वरिष्ठ दीदियां, जिनकी छत्र छाया में यह सारा आयोजन हो रहा है, उन सभी का भी धन्यवाद करते हुए आज की इस सभा की शोभा आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, खास अपने निर्मल हृदय से हम सबका आशीर्वचन दिया, आपका भी तह दिल से धन्यवाद। आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी, जिन्होंने विशेष करके हमें देने की प्रेरणा दी। देने में ही विकास है, सच्ची विकास है। एक किसान किस तरह से देता है, तभी बीज को देता है तो बीज को प्राप्त करता है, तो सच्चे विकास देने में है। इस बात को स्पष्ट करने वाले आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी को भी विशेष धन्यवाद। और साथ में हमारे वरिष्ठ, हमारे मेहमान आदरणीय दिनेश जी, दिनेश कुलकर्णी जी, जिन्होंने पंच महाभूतों को लेकर भी के भी सच्चे विकास की राह हमको दिखाया है। और साथ में डॉक्टर आरएम चौहान जी आज हमारे साथ भले ही नहीं है, लेकिन आपकी शुभ प्रेरणा की वजह से, आपकी शुभ भावना की वजह से, और आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प को लेकर आपने इस एमओयू की स्वीकृति दिया है। और साथ ही हमारे डॉक्टर मुरलीधरन जी जो आज उपस्थित हैं हमारे बीच में, आपने बहुत सुंदर अपने विचार रखे और विशेष एमओयू का साइन भी किया है। इस सर्मनी को आज विशेष जो भी टीम है उनके साथ में, उनको लेकर के आए हमारे साथ में, और इस एमओयू सर्मनी को भी साथ में लिया है। ऐसे डॉक्टर मुरलीधरन जी को, आदरणीय सरला दीदी जी, जिनके संकल्प से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, आप प्रणेता है और वैचारिक क्रांति की जिन्होंने आज प्रेरणा दिया है सर्वांगीण विकास के लिए, ऐसे सरला दीदी जी। और सबके स्वागत करने वाले आदरणीय राजू भाई जी, जो उपाध्यक्ष है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के, आपने अपने वक्तव्य के साथ में सभी का स्वागत भी किया है और आप एक तरह से ब्रेन एंड विजन बिहाइंड शाश्वत योगी खेती कह सकते हैं। आपका भी इस सत्र में धन्यवाद करते हैं आदरणीय सुनंदा दीदी जी, विशेष करके आपकी प्रेरणाओं से भी अनेक किसान शाश्वत योगी खेती की शुरुआत किया, अनेकों रिसर्च भी चले आपके मार्गदर्शन में, आपका भी धन्यवाद। आदरणीय तृप्ति बहन जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बद्री भाई, विशाल भाई जी, आपके स्वच्छ छवि से सबके मन मोहने वाले और आज का जो मुख्य वक्तव्य जो है प्रस्तुत करने वाले बद्री विशाल जी, और साथ में सभा में उपस्थित सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, टीचर्स बहने हैं, हमारे बहुत सारे गाइड भाई बहने भी आए हैं दूर दूर से, सभी का, सभी श्रोताओं का भी विशेष धन्यवाद। ज्ञान सरोवर के सभी निवासी जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग दिया, सभी डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों का, विशेष करके जर्नलिस्ट का भी इस सभा में उपस्थित है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ओम शांति।
सर्व का धन्यवाद करने वाले आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुमंत भाई जी का भी तहे दिल से धन्यवाद है। अभी हम सभी प्रभु स्मृति में 3 मिनट के लिए बैठेंगे। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक आध्यात्मिक रसम है, किसी भी कार्य की शुरुआत प्रभु स्मृति से और समाप्ति भी ईश्वरीय स्मृति से।